तार्भकम् तं शमानं मन्यमाना आत्मनो गुरुमत्तया गले गृहीत उत्थ्रष्टुम् नाशक्नोदद्भुतार्भकम् तमश्यमानं मन्यमाना आत्मनो गुरुमत्तया गले गृहीत उत्थ्रष्टुम् नाशक्नोदद्भुतार्भकम् तं शमानं मन्यमानम् आत्मनो गुरुमत्तया गले गृहीत उत्थ्रष्टुम् नाशक्नोदद्भुतार्भकम्। महाराज मन्यमाना आत्मनो गुरुमत्तया गले गृहीत उत्थ्रष्टुम् नाशक्नोदद्भुतार्भकम्। मतजिस् तमशमानं मन्यमाना आत्मनो गुरुमत्तया गले गृहीत उत्थ्रष्टुम् नाशक्नोदद्भुतार्भकम्। मतजिस् तं शमानं मन्यमाना आत्मनो गुरुमत्तया गले गृहीत उत्थ्रष्टुम् नाशक्नोदद्भुतार्भकम्। तं कृष्णको अशमानम्, लोहे की तरह के भारी पत्थर, मन्यमानः इस तरह सोचते हुए, आत्मनः गुरुमत्तया अनुमान से भी अधिक भारी होने के कारण, गले उसकी गर्दन में, गृहीते अपनी बाहों से बंधा या आलिंगन किया जाकर, उत्थ्रष्टुम छोड़ने के लिए, न अशक्नोत समर्थ नहीं था, अद्भुत अर्भकम अद्भुत बालक को जो सामान्य बालक से भिन्न था। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति विदान स्वामी महाराज श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की। कृष्ण के भार के कारण तृणावर्त उन्हें विशाल पर्वत या लौह का पिंड मान रहा था, किंतु कृष्ण ने असुर की गर्दन पकड़ रखी थी, इसलिए वह उन्हें फेंक नहीं पा रहा था। इसलिए उसने सोचा कि यह बालक अद्भुत है, जिसके कारण मैं न तो उसे ले जा सकता हूँ, नहीं इस भार को दूर फेंक सकता हूं। तात्पर्य, तृणावर्त कृष्ण को आकाश में ले जाकर मारना चाहता था, किंतु कृष्ण को तृणावर्त के शरीर पर सवारी करने और कुछ देर तक आकाश में यात्रा करने में आनंद आ रहा था। इस तरह कृष्ण को मारने का उसका प्रयास असफल रहा, किंतु आनंद चिन्मय रस विग्रह कृष्ण को इस लीला में खूब आनंद आया। अब जबकि तृणावर्त कृष्ण के भार से नीचे गिरने लगा, तो उसने अपने आप को बचाने के लिए कृष्ण को अपने गले से छुड़ाकर नीचे पटकना चाहा, किंतु वह ऐसा न कर पाया, क्योंकि कृष्ण ने उसे बड़ी मजबूती से पकड़े थे। फलस्वरूप यह तृणावर्त की योग शक्ति का अंतिम घड़ी थी। अब वह कृष्ण की योजना से मृत्यु के मुख में जा रहा है। तो अनुवाद कृपया पीछे दोहराइए। कृष्ण के भार के कारण तृणावर्त उन्हें विशाल पर्वत या लौह का पिंड मान रहा था, किंतु कृष्ण ने असुर की गर्दन पकड़ रखी थी, इसीलिए वह उन्हें फेंक नहीं पा रहा था। इसलिए उसने सोचा कि यह बालक अद्भुत है, जिसके कारण मैं न तो उसे ले जा सकता हूँ, न ही इस भार को दूर फेंक सकता हूँ। इसमें 15वां अध्याय ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरवद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वांछा कल्पतरूहेश कृपा सिंधुभेव च पतितानाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु क्वाहं दरिद्र पापी यान क्व कृष्ण श्री निकेतन ब्रह्म बंधुरिति स्माहं बाहुभ्यां परिरंभितः। सर्वप्रथम महाराज जी के चरण गुणों में प्रार्थना करेंगे कि महाराज आशीर्वाद दें कि हम ये सेवा भक्तों की प्रसन्नता के लिए और अपने शुद्धिकरण के लिए हम ये सेवा को कर पाएं। अन्य सभी भक्तों के चरणों में भी हम प्रार्थना करेंगे इस सेवा को ठीक से प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए निभा पाएं। तो बड़ा सुंदर अध्याय चल रहा है तृणावर्त का उद्धार। 3 दिन बाकी हैं केवल परीक्षित महाराज का, है ना, 7 दिन में से, लेकिन उनकी रुचि में कोई कमी नहीं है और पूरा खो चुके हैं वो भगवान लीलाओं में आनंद ले रहे हैं। तो हम भी देख सकते हैं कि कैसे भगवान भी आनंद ले रहे हैं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि कैसे है? किंतु आनंद चिन्मय रस विग्रह कृष्ण को इस लीला में खूब आनंद आया। सो भगवान आनंद लेते हैं कैसे, आकाश में तृणावर्त के साथ उड़ करके चले जाते हैं और बढ़िया आनंद लेते हैं भगवान। तो ये भी एक विशेष आनंद है जो इस संसार के लोग भी तृणावर्त की लीला को स्मरण करके करके वो लोग भी प्रयास करते हैं। आपने देखा होगा ये सागर में वो एक खेल होता है जिसमें नाव दौड़ती है बहुत तेजी से और उसे पीछे रस्सी से बंधा हुआ एक व्यक्ति होता है और नाव दौड़ती है और उसके बाद फिर वो उसको पैराशूट से उड़ा देती है और लोगों को बहुत मजा आता है। थोड़ा डर भी लगता है लेकिन मजा भी आता है ना। उसी प्रकार से आपने बचपन में मेले में देखा होगा कि वो गोल गोल चक्कर घूमने वाला एक होता है जिसमें बहुत सारे लोग बैठ जाते हैं, है ना, देखा है आपने, गोल गोल वो नीचे से ऊपर जाता है, बहुत लोग, बहुत मजा आता है ऊपर जाने में, नहीं तो। या भौतिक जगत में, पाश्चात्य जगत में रोलर कोस्टर राइड बोलते हैं, है ना, रोलर कोस्टर राइड में भी ऐसे ही होता है, आपको नीचे से 50 फुट की ऊंचाई या 60-70 फुट की ऊंचाई तक आपको 10 सेकंड में ले जाएंगे बहुत तेजी से, एकदम लोग घबरा जाते हैं और मजा भी आता है। और फिर नीचे लेकर के आ गए धड़ा, जैसे आप 5 माला से नीचे गिर रहे हो, तो लोगों को मजा आता है, तो भगवान भी ऐसी मजा ले रहे हैं। 20-25 साल पहले एक टेलीविजन में एक नाटक आता था, शायद कुछ भक्तों ने देखा होगा जब युवा उम्र के, तो शक्तिमान करके माफ कीजिएगा इसका नाम ले दिया मैंने, तो शक्तिमान का पूरा वो नाटक का और कुछ नहीं था उसमें, दम इतना ही था कि वो जो उसमें हीरो था वो बस ऐसे उड़ के जाता था, देखा उड़ के जाता था, सब लोग आनंद होते थे, अरे कितना बढ़िया उड़ के जा रहा है ना। उसको देख देख कर कई बच्चे भी अपने घरों की छत से उड़ के जाने लगे और वो मर गए लेकिन यहाँ भगवान सेफ लैंडिंग करके आनंद भी ले लिया अपना तो भगवान का ऐसा लीला करना में दिव्य आनंद है। अभी वो जो नाटक था वो धारावाहिक था, वो कितने साल चलता रहा, और यहां ब्रजवासियों का सौभाग्य देखिए कि ऐसे धारावाहिक नित्य नए नए हर रोज लाइव देखने को मिल रहे हैं, लाइव अपनी आंखों के सामने है। अब कोई धारावाहिक है जो 1 साल भी चले, जैसे भगवान ने ब्रह्म विमोहन लीला के समय पर जब वो धारावाहिक 1 साल भी चला ब्रज में, लेकिन आमतौर से देखा जाए तो धारावाहिक जितने भी वृंदावन में चलते हैं वो 1 दिन में ही कई बार 2 दिन हो जाते हैं, है ना, 1 दिन में ही कई बार 2-3 लीलाएं भी हो जाती हैं। तो ब्रजवासियों को तो नित्य नित्य नए नए धारावाहिक जो सच्चे हैं दिव्य भगवान की लीलाएं हैं परम आनंद देने वाली, उसका आनंद लेने का सु अवसर प्राप्त होता रहता है ना। और जहां तक रही तृणव्रत की बात, तो भगवान को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। श्रील प्रहलादानंद महाराज बता रहे थे एक बार कि रावण बलि महाराज से कुछ संबंधित है वगैरह कुछ, तो वो उनसे सहायता मांगने गया था कि भैया कुछ थोड़ा हमें सहायता करो, थोड़ा हमारे सहयोग करो, हमारा युद्ध वगैरह में हमारे जैसे बहुत सारे लोगों को करता ही था रावण। तो गया बलि महाराज, बोले मैं बूढ़ा हो गया अभी सब नहीं, अभी मेरे से नहीं होगा, पर मैं आपको कुछ उपहार दे सकता हूँ, बड़ा एक रत्न दे सकता हूँ उपहार में। तो रावण तो भोगी व्यक्ति, तो सोचा अच्छा है, बड़ा धन मिलेगा, कुछ काम आएगा कहीं तो कुछ। तो फिर वो एक कमरे में ले गए बलि महाराज रावण को, और उसको एक बड़ा हीरा दिखाया, ऑलमोस्ट एक पहाड़ के जितना बड़ा हीरा, और उसमें ऊपर से रूबी और कई कई और रत्न भी उस पर जड़े मड़े हुए थे अच्छे से। तो रावण तो देख करके बोला, अरे वाह। तो बलि महाराज बोले, ये आप ले सकते हैं। तो रावण खुश हो गया एकदम और उठाने लगा, शक्ति तो बहुत ही रावण की आपको पता है, तो उठाने लगा, उठा के ले जाऊंगा इसको। पर जब उठाने लगा तो उठा ही नहीं पा रहा है, बहुत प्रयास कर रहा है, पसीना छूट गया पूरा, कुर्ता गीला हो गया उठा ही नहीं पा रहा है रावण। तो बलि महाराज थोड़ा मुस्कुराए, रावण देखा, बलि महाराज बोले, पता है क्या है, ये तुम्हारा कानों का बाली है जब तुम हिरण्यकशिपु थे जब तुम हिरण्यकशिपु थे विष्णु ने तुम्हारा ऐसा हाल किया कि यहाँ पर बाली गिरा, और अब तुम इतने से होगी इसको उठा भी नहीं पा रहे हो, उस विष्णु से क्या पंगा लोगे तुम। और फिर तृणव्रत को देखा जाए तो वो तो फिर त्रेता युग की बात है रावण, और तृणव्रत की तो फिर द्वापर के अंत में क्या कहा जाए, जो छोटे मोटे। तो भगवान तो तृणव्रत से कोई डरने की बात नहीं है, तो आनंद ले रहे हैं अपना। कई इस अध्याय के कई तात्पर्य रूपा जी ने ये बात को बार बार उद्धृत किया है कि भगवान तो अपना आनंद ले रहे हैं बढ़िया से, हवा की सैर करके आ रहे हैं। आजकल भी देखो लोगों को बड़ा शौक होता है कि हवाई जहाज में एक बार तो यात्रा करनी है, गांव के लोगों को भी होता है, हमारे बेटा को बोलते हैं, अरे बेटा हमको भी मुंबई ले जाओ जरा एक बार तो हवाई जहाज में, हम भी देखें हवाई जहाज की यात्रा सैर कैसी होती है, जरा ऊपर से कैसा दिखता है, सबको एक होता है। लेकिन जो मॉडर्न ये सब है यंत्र, ये तो सब क्रैश भी हो जाते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन भगवान की यात्रा बड़ी रही, बढ़िया रही। और सचिनंदन महाराज एक आर्टिकल में लिखते हैं कहीं पर कि 8 लाख योजन ऊंचाई तक ले गया था वो, कौन, तृणव्रत भगवान को इतनी ऊंचाई पर ले गया था। हमने भी अपने बचपन में स्कूल में देखा है बवंडर आते हुए, जो ज़्यादा से ज़्यादा 100 फुट 150 फुट से ऊपर दिखता नहीं है, बस इतना और थोड़ा ऊपर हो 200 फुट, लेकिन ये ऊंचा था, थोड़ा ज्यादा ऊंचा था। तो भगवान तो आनंद ले रहे हैं, और भगवान ऐसी कितनी भी दिव्य लीलाएं दिखा दें, दिन में कई बार 2-3 भी दिखा दें, लेकिन ब्रजवासी ये नहीं मानने के लिए तैयार कि ये भगवान है। सो वृंदावन के पूर्वी दिशा की सीमा में एक वन है हास्य वन, तो एक दिन सारे ग्वाल बाल सब लोग वहां पर जाके एकत्रित हो गए और भगवान कृष्ण को पूछे, अरे गोपाल, सब लोग आपस में चर्चा करने लगे, ये इसके पास कुछ ना कुछ तो शक्ति है, जितने असुर आते हैं सबको मार डालता है, ये इतना शक्तिशाली कैसे है? और कोई बोल रहा था इसके पास में खुफिया मंत्र है जो हमें देता नहीं है, दूसरा बोलने लगा, अरे इसके पास में कोई खुफिया शक्ति है जो बताता नहीं है, छुपी शक्ति कुछ तो है, सारे असुरों को मार देता है। तो सब ऐसे चर्चा करने लगे तो भगवान ने बोला, ठीक है मैं बताता हूँ आपको, आप सब आ जाइए, ये राज की बात बताता हूँ आपको। तो जैसे सुना राज की बात, एकदम सब लोग एकत्रित हो गए सुनने के लिए, है ना, एकदम सब, हाँ सीक्रेट बात पता लग रही है, एकदम सब कान लगा कर, एकदम कई बार हमारे से बद्ध जीव किसी की निंदा चुगली हो रही हो तो फिर तो वैसे वो लोग एकदम अपने अनुभव समझ सकते हैं अच्छे से। तो सब लोग एकदम कान लगा के सीक्रेट भी भगवान बताने वाले हैं कि भैया कैसे मैं ये सबको मारता हूँ। तो भगवान ने बोला, देखो जब मेरा जन्म हुआ था ना, अच्छा फिर तो गर्ग मुनि आए थे, अच्छा उन्होंने दिया होगा मंत्र, मैं बोल रहा था ना तेरे को, सुन तो लो। हाँ बोलो बोल बोल। जब गर्ग मुनि आए तो मेरे पिताजी को बोले थे वो, क्या कि आपका जो बेटा ये विशेष है, ये अलग अलग युगों में अलग अलग रंगों में अवतरित होता है और इसकी कृपा से आपके ब्रज में, आप वृंदावन में जितनी मुश्किलें आएंगी विपदाएं आएंगी आप सबको पार कर लोगे, और इसके पास षडैश्वर्य जैसे कितने भी जो हैं ऑपुलेंस माने ऐश्वर्य हैं, वो सारे नारायण भगवान के समान शक्ति, भगवान के समान सब कुछ, नारायण के समान ही होगा। तो आप समझ लो कि मैं समझो सही से कि मैं भगवान हूं। तो सब एक पल के लिए देखे और फिर सब जोर से हंसने लगे, इतना जोर से हंसने लगे और सब हंसने लगे और उनको देखकर भगवान भी हंसने लगे। तो उस वन का नाम है हास्य वन। तो कहने का अर्थ क्या है कि वृंदावन में भगवान कुछ भी कर ले लोग विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। एक प्रवचन में प्रभुपाद जी बताते हैं, जब मीटिंग हुई उपनंद नंद की तृणव्रत के उद्धार के बाद, शायद सब लोग की मीटिंग हुई कि भाई ये बड़ा मुश्किल हो रहा है उसमें वगैरह, तो नंद बाबा ने उसमें थोड़ा बताया, क्योंकि सब लोग कहा करते नंद बाबा तुम्हारा लड़का कुछ तो विशेष है, तो नंद बाबा ने बताया कि गर्ग मुनि ने क्या कहा था वगैरह वगैरह। तो स्वभाव में सब कुछ होने के बाद भी वो कह रहे हैं कि नंद बाबा मानने के लिए तैयार नहीं है, एक प्रकार से एक स्थान में प्रभुपाद जी बताते हैं कि वो कहते हैं शायद देवी देवता होगा। प्रभुपाद जी खुद हंसते हुए बोलते हैं, देखो ब्रजवासियों की हालत, इतना सब करने के बाद भी कोई विश्वास तो है ही नहीं कि भगवान होगा, और देवी देवता होगा और वो भी शायद है। सो ब्रजवासियों की तो ऐसी आनंदमय भगवान के साथ में आश्रय पूर्ण लीलाएं हैं। तो ब्रह्मा जी ब्रह्म विमोहन लीला के बाद में बड़ी सुंदर प्रार्थनाएं करते हैं, उसमें बोलते हैं ब्रह्मा जी कि ये कितने सौभाग्यशाली हैं ब्रजवासी। अहो अति धन्या व्रज गोरमण्या स्तन्या मृतम पीतमतीवते मुदा यासाम विभो वत्सतरात्मजात्मना यस्तृप्तये यद्यपि न चालमध्वराः। अहो भाग्यम अहो भाग्यम नंदगोप व्रजौकसाम यन्मित्रं परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। तो ब्रह्मा जी कहते हैं क्या, दसवें स्कंद के 14वें अध्याय में बड़ा सुंदर कहते हैं, अहोति धन्या व्रज गो रमण्य, धन्य है इस ब्रज की गोपियां और गायें, स्तन्यामृतम पीतम अतीवते मुदा, बहुत संतुष्टता बहुत प्रसन्नता के साथ जी भर के जिनका दूध भगवान कृष्ण स्वयं पीते हैं। यासाम विभो, ब्रह्मा जी याद दिलाते हैं भूल मत जाना भैया ये कौन है, विभो प्रकट हो गए भगवान। श्री श्री राधा बिहारी श्री गौरताय सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की, गिरिराज गोवर्धन की, श्री प्रभुपाद जी की। तो ब्रह्मा जी फिर से याद दिलाते हैं कि भूलना मत, यासाम विभो वत्सतर आत्मजात्मना, किस रूप से इन्होंने इस विभु इस परम ब्रह्म भगवान ने किस कैसे दूध पिया, बछड़े के रूपों में 1 साल तक और आत्मज पुत्र के रूप में इनका दूध पान किया, और उससे जितनी संतुष्टता मिली, यस्तृप्तये न चालम अद्यपि न अध्वरा, अध्वरा माने वैदिक मंत्रोच्चारणों से भी भगवान को जितनी संतुष्टता नहीं मिली, इस दूध पीकर के उतनी संतुष्टता मिली भगवान को, जो नहीं मिलती है भगवान संतुष्टता वैदिक मंत्रोच्चारण वगैरह से भी जितनी, उससे ज्यादा पूर्ण संतुष्टता मिली। तो गोपियों का यशोदा मैया को तो ब्रह्मा जी ने कर दिया जय जयकार, उसके बाद उनको याद आया कि नंद बाबा भी छोड़े नहीं है। अहो भाग्यम नंद गोप व्रजा उपसाम यन्मित्रम परमानंदम, परमानंद पूर्ण ब्रह्म सनातनम, पूर्ण ब्रह्म सनातन भगवान इनके घर में, नंद बाबा के घर में खेलते हैं, नंद बाबा की चप्पल अपने सिर के ऊपर उठा करके लेकर के आते हैं। ये व्रजवासी कोई छोटे मोटे लोग नहीं है। इसलिए ये श्लोक को उच्चारण करने के बाद के पहले ब्रह्मा जी बताते हैं कि इसलिए इस कारण से मैं भी चाहता हूं कि वृंदावन में किसी रूप में भी मुझे आश्रय मिल जाए, वृंदावन में किसी भी रूप में। हे भगवान, आपको भूल करके दोबारा ऐसी गलती करके जैसी मैंने गलती करी अभी, कभी मेरा जीवन ना हो। और इस भाव को पकड़ करके हमारे आचार्यों ने कितने भजन लिखे हैं, है ना, भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कितने भजन लिखे, कीट जन्म हो जथा तुआ दास बहिर्मुख्य ब्रह्मा जन्म में ना ही आश, कि आपसे बहिर्मुख होकर मुझे ब्रह्मा का जन्म भी नहीं चाहिए, लेकिन आपके उन्मुख आप, उद्धव जी तो कहते हैं घास ही बना दो मुझे वृंदावन का, गोपियां वृंदावन जाते हुए उस घास के ऊपर चली जाएंगी, उनकी चरणों की धूली मिल जाएगी, बस उतने में हो गया मेरे लिए, बस हो गया। तो ये वृंदावन वासियों का भाव है, जिसको हमने भगवान की भक्ति करके धीरे 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 अपने हृदय में अनुकूल करना है। तो प्रभुपाद जी कुंती महारानी की शिक्षाएं नामक पुस्तक बड़े दिव्य ग्रंथ में बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं, 14वें अध्याय के आखिर में 2 पैराग्राफ है कि भक्तों ने साधारण अपने जीवन काल में कैसे जीना है, क्या करना है। तो मैं ध्यान से पढ़ूंगा, इसको पढ़ूंगा, आप कृपा करके ध्यान सुनने का प्रयास कीजिए। श्री प्रभुपाद जी बड़ा सूक्ष्म बड़ा सुंदर बात बता रहे हैं हम सबके लिए। अतएव भक्तों के लिए वृंदावन की भावना मन की पूर्ण अवस्था है। वृंदावन के निवासियों को कृष्ण को समझने की कोई परवाह नहीं रहती, प्रत्युत वे बिना शर्त के कृष्ण से प्रेम करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि वे यह सोचें कृष्ण ईश्वर है इसलिए मैं उनसे प्रेम करता हूं। वृंदावन में कृष्ण ईश्वर की तरह अभिनय नहीं करते, वे सामान्य ग्वाल बाल की तरह क्रीड़ा करते हैं और कभी कभी अपने को भगवान सिद्ध करते हैं, किंतु भक्तगण इसे जानने के लिए चिंतित नहीं होते। किंतु कुंती देवी वृंदावन की वासिनी नहीं थी, वे तो वृंदावन से बाहर हस्तिनापुर की निवासिनी थी। वृंदावन के बाहर के भक्त यह अध्ययन करते हैं कि वृंदावन के निवासी कितने महान हैं, किंतु वृंदावनवासी यह जानने की परवाह नहीं करते कि कृष्ण कितने महान हैं। उनमें यही अंतर है, इसलिए हमारी चिंता का विषय एकमात्र कृष्ण से प्रेम करना होना चाहिए। हम जितना ही अधिक कृष्ण से प्रेम करेंगे उतने ही अधिक पूर्ण बनेंगे। कृष्ण को तथा कृष्ण के सृजन कार्य को समझना आवश्यक नहीं है, कृष्ण ने भगवद गीता में अपने विषय में बतलाया है। हमें इससे अधिक समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए, हमें कृष्ण के विषय में अधिक जानने की झंझट नहीं उठानी चाहिए, ऐसा संभव नहीं। हमें केवल कृष्ण के प्रति अपने शुद्ध प्रेम को बढ़ाना है, यही जीवन की सिद्धि है। तो ये प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर एक भाव प्रस्तुत कर रहे हैं। यस, हमको जरूरत है भागवतम का 3रे स्कंद में, 2रे स्कंद में, 5वें स्कंद में विश्वरूप को समझने की, गीता 11वें अध्याय के विश्वरूप को समझने की जरूरत है, उसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन साथ ही साथ प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि प्रायोरिटी है ना, ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, ये है। अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छा है, नहीं भी आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप गुरु कृष्ण के गुरु गौरांग के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए कृष्ण की सेवा के प्रति ज्यादा गंभीर रहिए, सेवा से प्रेम अपने आप विकसित होएगा वगैरह वगैरह। तो जब भगवान आनंद ले रहे हैं, ब्रजवासी आनंद ले रहे हैं, तो हम साधक भक्त भी कुछ इन दिव्य लीलाओं से शिक्षा पूर्ण आनंद ले लेते हैं। तो सबसे पहला तो हमें एक ये चीज देखना है कि ये अभी तृणाव्रत का अभी बद्ध होने वाला है, कुछ ही क्षणों में अभी धड़ाम नीचे गिरेंगे आकर के, तो भक्त लोग इसमें क्या आनंद लेते हैं, कोई पूछ सकता है ना, अरे आप तो भक्त लोग हो, किसी का वध हो रहा है तो उसमें आपको आनंद आ रहा है। जैसे फोर्ट है ना दक्षिण मुंबई में है, वहां पर गिरिराज महाराज एक दिन सुबह सुबह किसी कार्य के लिए मंदिर की सेवा के लिए घूम रहे थे, तो अखबार में उन्होंने पढ़ा है ना, ए वी नायर की मृत्यु हो गई है। तो एकदम से उनके मन में थोड़ा उल्लास लगा, हाँ ऐसे ही कुछ खबर। तो इमीडिएटली उनके मन में एक संशय आ गया, अरे ऐसा कैसे, मैं भक्त होकर के किसी की मृत्यु पे प्रसन्न हो रहा हूँ। तो उन्होंने मन में प्रसन्नता हो रही थी लेकिन अपने आप को प्रसन्न नहीं हुआ। फिर मंदिर जब वापस आए तो देखा प्रभुपाद जी के संग में सब भक्त लोग फीस्ट कर रहे थे या कुछ तो तो फिर बाद में उनका ये संशय दूर हुआ कि भाई जो व्यक्ति बिना मतलब से भक्तों को परेशान कर रहा है वगैरह, उसके ऐसे हो जाने से साधु भी प्रसन्न होते हैं। इसके बारे में हम आगे थोड़ा सा और कुछ देर बाद चर्चा करेंगे इसके बारे में कुछ। तो उसी प्रकार से भक्तों को ये प्रश्न उठ सकता है मन में कि भाई मेरे को प्रसन्नता क्यों हो रही है किसी के बद से। सो भक्तों को ये प्रसन्नता है कि इस व्यक्ति के उद्धार के लिए कृष्ण के द्वारा इसका वध हो जाना सर्वश्रेष्ठ सम्मान है इसका, जिससे इसको कृष्ण का आश्रय प्राप्त हो जाएगा, इसलिए भक्त खुश होते हैं। जैसे अघासुर के वध के बाद देखिए तो हिजोलेंस राधा गोविंददास गोस्वामी महाराज बता रहे थे कि ब्रह्मा थोड़े नाराज हो गए भगवान से कि हमने इतने कंप्यूटर पे आदमी बिठाए, इतने लोग काम पे लगाए, इनके अघासुर के पापों को कंप्यूटर की हार्ड डिस्क भर गई इतनी हमारी, और आप पल भर में उसको 100 रुपये मुक्ति दे दिए, बताओ। तो प्रेम का कोप है ना। जैसे प्रभुपाद जी एक बार बोले कि भगवान नरसिंहदेव बोले ब्रह्मा जी को कि आपने मेरा काम बहुत मुश्किल बना दिया, आगे से वरदान सोच के देना जरा। प्रभुपाद जी प्रवचन में बोले, ऐसे भगवान ने बोला ब्रह्मा जी को। तो ऐसे भक्त लोग प्रसन्न ही होते हैं जब इस प्रकार से कृष्ण के द्वारा असुरों का उद्धार हो जाता है। दूसरा शिक्षा हम एक पकड़ सकते हैं कि अब हम देख रहे हैं यहाँ पर कि कृष्ण को लेकर के, कृष्ण की सेवा, कृष्ण की भक्ति को लेकर के तृणाव्रत इतनी ऊंचा चला गया, इतना ऊंचा चला गया, इतना आगे बढ़ गया है, लेकिन अब छोड़ना चाहता है। तो इसमें शिक्षा मिलती है क्या, अगर हम भक्ति ठीक से नहीं कर रहे तो हम कितने भी ऊंचे चले जाएं, एक दिन वो भक्ति गले में बोझ लगेगी, हट हट। तृणावर्त ऐसे कर रहा था ना। तो भक्ति को ठीक से करना बहुत जरूरी है। तो कैसे हमें फिर महसूस होता है उस समय पे अगर भक्ति को ठीक से अर्पण ना किया जाए अभ्यास। एक राहत चाहिए मुझे, मैं बहुत पीड़ा में हूं, तड़प रहा हूं मैं, यहां पर भक्तों के समाज में मेरा दम घुट रहा है, मुझे राहत चाहिए, ऐसा अनुभव कई बार हमको हो सकता है ना। वो अलग बात है, भगवान जल्दी छोड़ते नहीं है, एक बार पकड़ लेते हैं। जैसे एक भक्त बता रहे थे कि कोई भक्त थे मंदिर में कहीं पर, तो इस्कॉन मंदिर में, वो इसी राहत की भाव ढूंढते हुए कैसे भी मंदिर छोड़ के चले गए कई सालों बाद। उसके बाद उन्होंने सोचा कहीं दूर जाकर के आनंद का जीवन बिताऊंगा। तो बाहर गए थे तो देखा वो बस स्टॉप पे, वहां पर एक भक्त पुस्तक वितरण कर रहा था। फिर आगे वो एयरपोर्ट पे गए, वहां पर देखा कि कोई भक्त बाजू में बैठा था, कोई वहां पर भी भक्त घूम रहे थे कोई हरे कृष्ण माला लेकर के। फिर हवाई जहाज में बैठा तो उसके बाजू में ही भक्त था, बोला हरे कृष्ण। और ये जो भक्त था ये पैंट शर्ट पहना था बिल्कुल आम व्यक्ति के जैसे, वो भक्त इसको प्रचार करने लगा। ये सोचा यहां भी राहत नहीं मिल रही, यहां भी कहां से आ गया ये। फिर हवाई जहाज से उतरा जहां पर भी, किसी सागर के तट पर जाकर के सर्फिंग करने लगा, सागर में आनंद लेने लगा। वहां जब सागर के अंदर गया तैरते हुए मजा लेते हुए, पीछे से शार्क मछली आ गई। भगवान के कुंडल भी कानों में जो होते हैं, मकर कुंडल, तो मकर माने शार्प, मकर कुंडल होते हैं भगवान के। तो शार्क वो मछली वो आ गई उसके पीछे, और वो तो डर गया कि तो खा जाएगी अभी, तो पूरा भागने लगा इधर उधर, और जिधर जिधर वो भाग रहा था पानी में उधर उधर वो आने लगी। और इतनी देर में उसको पूरा अभी धैर्य छूटने लगा, भगवान को प्रार्थना किया, ये भगवान मुझे बचा लो, मैं आपके चरण में वापस आ जाऊंगा अभी। और एक बड़ी लहर आई, उसको उठा के बाहर फेंक दिया उसको, और वो बच गया। सागरी तट पे आते उसको होश आया थोड़ी देर में, तो बोला बस वापस मंदिर आके माला पकड़ के भक्त हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो कहने का अर्थ है कि राहत का भाव ढूंढते हैं हम, कि राहत चाहिए मुझे, दम घुट रहा है मुझे, अगर हम भक्ति को ठीक ठीक से अभ्यास नहीं करते हैं। तो हमें राहत नहीं, हमें आश्रय ढूंढना चाहिए, क्योंकि संसार में किधर भी चले जाएं राहत नहीं मिलेगी। भगवान कृष्ण को छोड़ करके तदुपेक्षिता नाम तावत विभो तनुभृताम तदुपेक्षिता नाम 7:9-19 में कहते हैं प्रहलाद महाराज, जिसको आपने उपेक्षा कर दिया, आपने छोड़ दिया हे भगवान, उसको इस संसार में भला दवाई क्या बचाएगी, माँ बाप क्या बचाएंगे और नाव क्या बचाएगी इस मझधार में। तो इस संसार में राहत नहीं मिलेगी, कृष्ण के चरणों में आश्रय मिलेगा। तो हमने भक्ति को शुरुआत से ठीक ठीक अभ्यास करना है, और भक्ति के अभ्यास में उद्देश्य सही होना बहुत महत्वपूर्ण है। श्रील प्रभुपाद लीलामृत के प्रकरण 18 में एक बड़ा सुंदर लिखते हैं सत्स्वरूप महाराज, बड़ा सुंदर पंक्ति लिखते हैं, मैं इसको पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। और तब कृष्ण ने मुझे हर चीज भेजी, आदमी धन आदि। इस तरह यदि एक निष्ठावान व्यक्ति मिल जाता है और संसार के किसी भी भाग में केंद्र खोलता है तो कृष्ण हर तरह से उसकी सहायता करेंगे। निष्ठावान व्यक्ति है, प्रभुपाद जी ने लगा दिया वहां पर एक कंडीशन, निष्ठावान व्यक्ति माने जो अभ्यास सही सही कर रहा है भक्ति का, तो कृष्ण उसकी हर तरह से सहायता करेंगे। कृष्ण से शक्ति प्राप्त किए बिना कोई कृष्ण भावना मृत का प्रचार नहीं कर सकता। अब सुनिए ध्यान से जो महत्वपूर्ण लाइन लिखी है, इन मामलों में शैक्षिक योग्यता, कोई बहुत पढ़ा लिखा है IIT NIT वगैरह वगैरह लायर वगैरह, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज अंगूठा छापते हैं उनकी हर रोज, ऐसे IITN प्रणाम करके हमारे आरती उतारते हैं। इन मामलों में शैक्षिक योग्यता या आर्थिक शक्ति की सहायता नहीं होती, वरन उद्देश्य की सच्चाई से हमेशा सहायता मिलती है। तो भक्ति जब हमने करनी है, कोई भी सेवा हमने करनी है, तो पहले ये परखना है मेरा उद्देश्य क्या है। भागवतम में ही हमें अलग अलग प्रचारक मिलते हैं, 7वें स्कंद में हिरण्यकश्यप प्रचार करते हैं अपनी भाभी और माँ को, भयंकर गीता के ऊपर प्रवचन करते हैं। आप 7:2:28 से आगे 20 श्लोक पढ़ेंगे तो शौक हो जाएंगे, आप स्तब्ध रह जाएंगे कि इतना सुंदर गीता प्रवचन ये किसका है, है? तो हिरण्यकश्यप का है, उद्देश्य कुछ और है प्रवचन करने का। 8वें स्कंद में हम देखते हैं शुक्राचार्य प्रवचन करते हैं अपने शिष्य बलि महाराज को, उद्देश्य कुछ और है। और हम देख रहे हैं 9वें-10वें स्कंद में फिर भगवान स्वयं मत्स्य अवतार में प्रचार करते हैं 9वें स्कंद के अंत में, और उनके भक्त सुखदेव गोस्वामी यहाँ प्रचार कर रहे हैं। तो भागवत में ही हमें नाना उदाहरण मिलते हैं, अलग अलग लोग सेवा करते हैं अलग अलग उद्देश्य से। उद्देश्य की गहराई को परखना, पहचानना और सही उद्देश्य पर चलने के लिए अपने हृदय को प्रेरित करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं तो एक दिन जरूर हम कितने भी ऊंचे चले जाएं, राहत ढूंढना पे मजबूर हो जाएंगे। नाना प्रकार की राहत वो अलग विषय है, किस प्रकार से हम राहत ढूंढते हैं, नाना प्रकार से, भक्तों के संग में रहते हुए, भक्तों के संग थोड़ा दूर होते हुए। और उद्देश्य की गहराई को पहचानना और परखना एक और अलग विषय है, बड़ा लंबा विषय है कि मैं क्यों ये सेवा कर रहा हूँ, दूसरे को दिखाने के लिए क्या, ये सेवा मैं क्यों कर रहा हूँ दूसरों से कॉम्पिटिशन के भाव प्रतिस्पर्धा करते हुए क्या, ये सेवा मैं क्यों कर रहा हूँ उसे ईर्ष्या करते हुए क्या, ये सेवा मैं क्यों कर रहा हूँ डर से क्या, ये सेवा मैं क्यों कर रहा हूँ मेरी पदवी चली जाएगी क्या, ऐसे दर्जनों निचले उद्देश्य हो सकते हैं। बाह्य रूप से शुद्ध लगेगा कि मैं सेवा कर रहा हूँ, अगर इसके बारे में आप थोड़ा सा और पढ़ना चाहते हैं तो वो जो श्लोक है मेरे ख्याल से 4th अध्याय आदि लीला के 4th अध्याय में 165वां नंबर श्लोक है, कृष्णेन्द्रिय प्रति वांछा तारे बलि प्रेम, आत्मेन्द्रिय प्रति वांछा तारे बलि काम। इस श्लोक के तात्पर्य के बीचों बीच प्रभुपाद जी 15-16 निचले उद्देश्य लिखते हैं, जिसमें सहनशीलता भी लिखा है। इन उद्देश्यों में नहीं होना चाहिए भक्त ने, इन उद्देश्यों में फंसा नहीं रहना चाहिए भक्त ने, शुद्ध भक्ति करना चाहिए शुद्ध। तो जितनी मात्रा में इन उद्देश्यों को हम पहचान करके परख करके शुद्ध करके चलेंगे, उतनी मात्रा में पेड़ की जितनी जड़ में पानी डालेंगे अपने आप उतना ऊपर जाएगा, पत्तों में पानी देने की जरूरत नहीं है। तो ये हमने देखना है कि जब हम भक्ति कर रहे हैं, सेवाओं में ऊंचे जा रहे हैं, तो हमारा उद्देश्य बड़ा ध्यान रखना जरूरी है। ये उद्देश्य बहुत 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 जरूरी है। प्रभुपाद जी लिखते हैं ना, एटीट्यूड, मनोवृत्ति। अगर हमारी मनोवृत्ति भी सही नहीं है, हम कितना भी ऊंचा सेवा कर लें, अगर मनोवृत्ति सही नहीं है, उससे हृदय निर्मल नहीं होगा, हृदय हल्का नहीं होगा, कृष्ण अच्छे नहीं लगेंगे, ये लीलाएं बोरिंग लगेंगी। इतनी बार सुन लिया तृणाव्रत का उद्धार, अभी बस करो यार, परेशान कर दिया। अब किधर ये अध्याय में दिनों दिन यही तृणाव्रती चल रहा है, ये अनुभव हमें होता है कभी कभी। तो अगर हमारा जड़ में ठीक पानी नहीं डाला है हमने, जैसे कभी कभी पेड़ की जड़ में, अगर जैसे एक मंदिर में एक पेड़ था, उसकी जड़ में गर्म पानी डाल देते थे, जो विग्रहों की सेवा, कुछ तो कोई बर्तन घिसने का भी गर्म पानी बचता था, वो जड़ डाल देते थे, और धीरे धीरे इतना बड़ा पेड़ एक दिन धड़ाम से गिर गया। सब लोग, हाँ ये कैसे गिर गया, क्योंकि पानी सही नहीं डाल रहे थे उसमें, वो जो साबुन का जो पानी होता है गर्म वाला, वो डाल देते थे कि चलो भगवान के बर्तन का पानी, कोई तो डाल देता था भक्त कुछ तो। हमने बड़ा ध्यान रखना है कि जब हम भक्ति करें तो उसको प्रॉपरली अभ्यास करें, इम्प्रॉपरली ना करें। और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है अपनी मनोवृत्ति या अपने उद्देश्यों को परखते हुए चलें, नहीं तो फिर हम कितने भी ऊँचे चले जाएं, एक न एक दिन सूक्ष्म रूप से अंदर अंदर या बाह्य स्पष्ट रूप से हम राहत की भावना ढूंढने बैठेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है इसके, ये बहुत गहरा विषय है, उसके हम बाद में देखेंगे कभी। आखिरी हम जो इसमें से शिक्षा पकड़ सकते हैं कि इन लीलाओं के, हमने जब हम इन लीलाओं को श्रवण कर रहे हैं तो कैसे हृदय का शुद्धिकरण होता है। भक्ति विनोद ठाकुर अलग अलग असुरों से अलग अलग शिक्षाएं देते हैं, ये हृदय शुद्धि होगा अनर्थ का, तो कैसे हमारा हृदय शुद्धि होगा। तो जब हम लीलाओं को सुनते हैं, अगर हम गुरु परंपरा में सच्चे गौड़ीय वैष्णव आचार्य श्रील प्रभुपाद और उनके सच्चे अनुयायियों के मुख कमल से सुनेंगे, तो लीला को सुनते सुनते हम उस लीला के दृश्य में पूरा खो जाते हैं, है ना। जब चित्त उसमें खो जाता है उस लीला में, क्योंकि ये कृष्ण की दिव्य लीलाएं हैं, उससे चित्त शुद्ध हो जाता है। और लीलाओं में खो जाना ये कोई नई बात नहीं है हमारी परंपरा में, स्वयं हम श्री चैतन्य महाप्रभु को देख सकते हैं, एक दिन वराह देव की लीला के आवेश में पूरा खो गए चैतन्य महाप्रभु, और मुरारी गुप्त के कंधे पर चढ़ करके बोले, पृथ्वी को उठा करके न दौड़ रहे कमरे, मुरारी गुप्त भी लेकर के अपने भवन में गौरांग महाप्रभु को दौड़ रहे हैं इधर उधर, क्योंकि महाप्रभु पूरा वराह देव के उसमें चले गए। एक दिन नरसिंह देव के उसमें चले गए और नदिया नवदीप की सड़कों पर दौड़ने लगे, पूरा नरसिंह देव के आवेश में आकर के चैतन्य महाप्रभु स्मरण में आकर के। उसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि मध्य लीला के पहले अध्याय में रामदास विप्र का कथा आता है कि महाप्रभु को दोपहर के भोजन के लिए उन्होंने न्योता दिया था, महाप्रभु आ गए 12 बजे अपना स्नान करके, और यहाँ देखा तो वो तो बैठे सिर पे हाथ रख के, और महाप्रभु ने नजर मारा किचन में तो कुछ बर्तन वर्तन तो रख देखने, सब ऐसे जब भूख लग रही है अभी क्या हो रहा है, तो बोला रामदास विप्र तो क्या हुआ, तो वो बहुत दुखी है, वो बोले सीता का अपहरण कर लिया है दुष्ट रावण ने, माता सीता का, मेरा हृदय बहुत द्रवित हो रहा है दुख से। तो महाप्रभु बोले अच्छा भोजन भोजन, लक्ष्मण गए हैं अभी वन में, वो लाएंगे फल फल बेल पत्र सब लेकर के आएंगे, तब रंदन करेगी सीता माता तो मिलेगा। तो महाप्रभु देखे बोले अच्छा तुम्हारा अच्छा, उसमें खो गए पूरा ये। बाद में उनको थोड़ा होश आया तो जाकर के जल्दी जल्दी आस्ते बेस्ते कैसे कैसे भी उन्होंने कुछ भी बना करके दे दिया महाप्रभु को, 3 बजे जाके महाप्रभु खाने को मिला। तो महाप्रभु बोले अच्छा ठीक है, फिर समझाए उसके, तो वो बोलने लगा कि मैं अभी प्राण त्याग दूंगा। तो महाप्रभु ने बोला कि नहीं नहीं, अब प्राण मत त्यागो, माता सीता को कुछ नहीं होगा, भगवान की अंतरंगा शक्ति है, कोई हाथ नहीं लगा सकता, मेरी विश्वास रखो। समझाया तो उदास तो था, लेकिन उसने प्राण त्यागने का विचार अपना छोड़ दिया कम से कम, तो ऐसे खो गया था पूरा। तो उसी प्रकार से एक वैष्णव बता रहे थे कि जब उन्होंने एक बार एक रामायण में ये पढ़ा कि कैसे जटायु और रावण जब युद्ध कर रहे थे, रावण ने एक जगह कहा कि जटायु देखो हम दोनों हार नहीं रहे हैं, एक काम करते हैं एक दूसरे की कमजोरी बताते हैं एक दूसरे को, फिर हम प्रयास करते हैं। जटायु ने बता दिया कि मेरे पर जो है मेरी कमजोरी है, रावण ने झूठ बोला मेरे पंजे मेरे पैर के जो है कमजोरी है। तो और फिर युद्ध हुआ और वो जटायु, तो वो वैष्णव बताने लगे कि जब मैंने पढ़ा तो मुझे एकदम लगा जटायु तुमने क्यों बता दिया, रावण को ये बात, क्यों तुमने ऐसे बोल दिया? तो बोले कुछ क्षणों के बाद मुझे लगा कि अरे ये 20-30 लाख साल पुरानी घटना में किधर में, जब तो हो गया सब, भगवान अपने धाम पहुंच के सब कुछ हो गया। लेकिन फिर उनको एक महसूस हुआ कि ये असली चीज है। जब हम लीलाओं में कभी कभी सुनते हैं परंपरा में, जब तो लीलाओं में भगवान के भक्तों के चरणों में हम, हमारा चेतना चला जाता है, उधर हम खो जाते हैं, उससे हमारा चित्त शुद्ध हो जाता है ना। तो उसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि एक बार यहाँ पर हमारे आईएफ के भक्त लोग ड्रामा कर रहे थे, तो भी श्री राधा गोविंद दास गोस्वामी महाराज, 2 साल पहले की बात है, वो ड्रामा देख इतना खो गए, रोने लगे महाराज, पूरा भाव में आकर के पूरा रोने लगे महाराज। उसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि परीक्षित महाराज भी अघासुर वध में स्मरण करते हैं, जैसे इसके अंदर गए भगवान, मेरे भी माँ के गर्भ के अंदर आए थे, मुझे दर्शन दिया था, एकदम पूरा पूरा एक्स्ट्रा एकदम सावधान हो गए परीक्षित महाराज और बोले अच्छा अच्छा 1 साल वाला ये गड़बड़, बच्चे लोग अभी अभी बोल, 1 साल पुरानी बात को अभी घर पे जाके बोल रहे हैं बच्चे लोग कि मम्मी मम्मी आज सुबह कृष्ण ने अघासुर का वध कर दिया, ये 1 साल बाद ऐसे क्यों, एकदम पूरा सावधान परीक्षित महाराज। उसी प्रकार से सुंदर चैतन्य प्रभु बता रहे थे कुछ समय पहले यहीं पर ही, पोतना वध की लीला में पोतना का इतना सुंदर वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, पूरा खो गए क्यों उस लीला में, क्यों, क्योंकि उनका इसी लीला का श्रवण करके उनका उद्धार हुआ। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघ्राम सया पाय यदप्य साध्वी लेभे गतिं धातृचिताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम व्रजेम। तो जब इन लीलाओं को श्रवण करें हम गुरु परंपरा में भक्तों से, प्रभुपाद जी के सच्चे अनुयायियों से, प्रभुपाद जी से, तो हमारा चित्त भी इसमें खो जाएगा और उस प्रकार से हमारा चित्त धीरे 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 आप देखेंगे कि शुद्ध हो जाएगा। तो अब बात आती है कि श्रवण कितना करना है, प्रभु जी हम तो श्रवण कर रहे हैं लेकिन चित्त तो व्यर्थ के प्रजल्प में, निंदा चुगली में, अतिरिक्त सोने में या अत्यधिक खाने में चला जाता है। प्रभुपाद जी ये 3 चीजें लिखते हैं 5वें स्कंद के 8वें अध्याय के 29वें तात्पर्य के अंत में, कि अगर भक्त ने जीवन भर ब्रह्मचारी रहना है, जीवन भर भक्त रहना है, तो उसका खुफिया राज है कि एक क्षण भी अपने जीवन का व्यर्थ न गवाएं इन 3 चीजों में, अत्यधिक खाना, अत्यधिक सोना और व्यर्थ की बातें करना, अनर्गल बात करना। प्रभुपाद जी लिखते हैं तो हमारे जीवन में तो ऐसा हो रहा है, तो कितना श्रवण करना है। तो उद्धव जी बोलते हैं 11वें स्कंद में, दष्टम जनम संपतिते बिलयस्मिन् काला निह क्षुद्र सुखोरुतर्षम समुद्धरैनम कृपया पवर्गैः वचोभिरासिंच महानुभाव। कितना श्रवण करना है कि पूरा पूरा डूब जाना है श्रवण में। तो श्रील गौर कृष्णदास गोस्वामी महाराज एक बार प्रवचन कर रहे थे, श्लोक को बड़ा सुंदर उदाहरण दे रहे थे कि जब वो अपने स्कूल में थे 6ठी क्लास में, तो एक बार स्कूल जा रहे थे सुबह सुबह 8 बजे, तो देखा कि सब लोग एक किनारे में गांव में हल्ला हो गया है, सब लोग दौड़ते जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि एक व्यक्ति को सांप ने काट लिया था। तो इस श्लोक की दूसरी लाइन में बोलते हैं उद्धव जी, काला निहक क्षुद्र सुखोर तर्शम, क्षुद्र सुख के लिए मैंने सर्प के द्वारा डसा गया हूं संसार के सुखों के लिए, काला निह, अनिह मतलब समय रूपी सर्प से मैं डसा गया हूं, इस काल रूपी सर्प से मुझे डस लिया है, संसार के सुखों में फंसा हूं। उस व्यक्ति को गांव में सांप ने डस लिया था और सब लोग, और ऐसे से फड़फड़ा रहा था वो, उसके मुंह से फेन निकलने लग रहा था, बहुत फड़फड़ा रहा था वो, तो कैसे तो भी बहुत 4-10 लोग पकड़ के उसको कुएं के पास में ले गए पानी के, और जब कुएं के पास ले गए तो फिर एक के बाद एक उसके ऊपर बाल्टी पानी की डालनी शुरू करी। और महाराज बोले कि अब स्कूल कौन जाएगा, अब तो हम देखने लगे तमाशा। और सुबह 8 बजे शुरू हुआ, 2 बजे तक बोले, 2 बजे तक निरंतर पानी की बाल्टी उसके ऊपर गिरती रही, निरंतर एक आदमी बाल्टी डालता था, हटता था, जब तक दूसरा आदमी तैयार होता था बाल्टी डालने के लिए। और बोले आधा कुआं खाली हो गया, आधा कुआं खाली हो गया, 6 घंटा निरंतर उसके ऊपर पानी की बाल्टी डालते रहे, 2 बजे वो आदमी बिल्कुल ठीक होकर के खड़ा होकर के चला गया घर पे, अपने खुद पैर पे चल करके। तो महाराज ये उदाहरण दे रहे थे, वचो भीर आसिंच, आसिंच ये शब्द का उदाहरण दे रहे थे महाराज की, इतना श्रवण करना है हमने, डूब जाना है श्रवण में पूरा, तब हमारा हृदय भी आनंद महसूस करेगा। अभी हमारा कैसा है श्रवण, सीकर के जैसा, भागवत में एक और शब्द आता है सीकर, बचपन में आपने कभी वो स्याही वाला पेन इस्तेमाल किया होगा, फाउंटेन पेन बोलते हैं उसको, कभी कभी रुक जा सूख जाता तो ऐसे करना पड़ता है, ऐसे करते हैं जब छिड़कते हैं तो आपने देखा जमीन पर कुछ कुछ बूंदें गिर जाती हैं गलती से, उस कुछ बूंदों के समान हमारा श्रवण है इधर 1921 कहीं पर सीकर शब्द भागवत में आया उसके बारे में। तो सीकर मात्र हमारा श्रवण से काम नहीं चलेगा, हमको परंपरा में श्रवण करना है। और श्रवण कैसे करना है, कुछ भी कृष्ण कथा श्रवण नहीं करना है। एक भक्त वृंदावन में बोल रहे दूसरे भक्त को कि मैं भेदभाव नहीं करता कौन कृष्ण लीला बोल रहा है, कृष्ण लीला बोल रहा है ना बस मैं जाके सुनता हूं, चाहे कोई वृंदावन के महाराज होना वो होना कोई भी हो, कृष्ण कथा ही तो बोल रहा है, सुनने में कितना अच्छा लगता है ना, वृंदावन के बाबा की कृष्ण कथा हम सुनने जा रहे हैं। लेकिन इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में परीक्षित महाराज सिखा रहे हैं कि ये भाव ठीक नहीं है। तदेव हार वदमन्य से चेत, हे सुखदेव गोस्वामी कृष्ण कथा तो बोलनी ही है, लेकिन आप अगर ठीक समझें ये मेरे लिए कृष्ण कथा तो आप बोलें, आप बोलें और वो तब बोलें अगर मेरे लिए ठीक है। ठीक है तो कृष्ण कथा तो बहुत है और बहुत लोग बोल रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं चैतन्य चरितमृत के तात्पर्य में कि रासलीला वादी वाली आदि कथाएं भक्तों को थोड़ा रुकना चाहिए, श्रवण नहीं करना चाहिए। तो कृष्ण लीला भी हर कोई सुननी नहीं है, और किससे श्रवण करनी है उसके बारे में भी कहते हैं निवृत्त तरशी रूपगीय माना भव औषधा श्रुत्र मनोभिराम, ये भव औषधि है लेकिन काम कब करेगी, जब निवृत्त तृष्णा व्यक्ति से सुनेंगे। प्रभुपाद जी बंगाली 70 साल का आदमी अंग्रेजी तो बंगाली भाषा में बोलते थे, अंग्रेजी भी छोटे कद के, ना पैसा था ना कोई जन न धन न जन न सुविधाएं, अकेले भिखारी के जैसे अमेरिका में घूम रहे हैं, लेकिन निवृत्त तरशी रूपगीय माना औषधि ने काम कर लिया, क्योंकि निवृत्त तृष्णा है। तो श्रवण भी हमने हर कोई लीला का नहीं करना है, उसमें भी ध्यान रखना है। प्रभुपाद जी गीता में लिखते हैं प्रिस्क्राइब्ड वे ऑफ लिविंग एंड एक्टिंग, तीसरे स्कंद के तीसरे अध्याय के 37वें श्लोक में लिखते हैं प्रभुपाद तात्पर्य में कि भक्तों ने जैसे डॉक्टर के पास में जाते हैं ना वो दवाई लिख के देता है, आप चुनते नहीं है दवाई की दुकान पर जाकर, प्रभुपाद जी लिखते हैं उसी प्रकार से भक्त ने साधक ने जीवन में क्या अभ्यास करना है, कैसे जीना है, क्या कार्य सेवा करना है, क्या श्रवण करना है, वो भी प्रिस्क्राइब्ड होना चाहिए डॉक्टर के द्वारा, गुरु परंपरा के द्वारा, वो भी प्रिस्क्राइब्ड माने हिंदी में क्या कहते हैं उसको, समझे ना, प्रिस्क्राइब्ड आप डॉक्टर ने देख के दिया होना चाहिए। तो परीक्षित महाराज भी वही कह रहे हैं अगर आप ठीक समझे, यमदूत भी यही कहते हैं 6 स्कंद के 3 अध्याय में यमराज को, आप ठीक समझे तो बताएं हमको। तो भक्त का ये भाव बड़ा जरूरी है कि हम, और तब क्या होगा, फिर हमारे हृदय से संशय दूर होंगे धीरे धीरे जब हम परंपरा में अपने अधिकार योग्य श्रवण करेंगे। जैसे कि रामदास विप्र की जो मैं कथा बता रहा था मध्य लीला के पहले अध्याय से, आप देखेंगे कुछ ही श्लोकों के बाद महाप्रभु जाते हैं कृतमाला नदी के तट पर सेतुबंध के पास, वहां पर जाते हैं और वहां पर संत समाज में इसी पॉइंट के ऊपर कथा हो रही है कि सीता माता को कूर्म पुराण से उद्धृत किया जा रहा है वहां पर सभा में, कि सीता माता को रावण कभी नहीं ले जा पाया, माया सीता को लेकर गया था। महाप्रभु सुनते ही बोले ये तो मेरे को प्रचार में चाहिए था, किसने प्रश्न पूछा था मेरे को, उत्तर मुझे मिला नहीं था, अच्छा हो गया प्रचारक अगर सुनता रहे नियमित रूप से, प्रचारक कभी ना ये सोचे आखिरी समय तक कि अब मुझे सुनने की जरूरत नहीं, अभी मैंने बहुत सुन लिया है, मैंने बहुत पढ़ लिया है, मुझे अभी मुझे सुनने की जरूरत नहीं है, समझे क्या। प्रभुपाद जी आखिरी समय तक अपने गुरु महाराज की वाणी का संग करते थे ग्रंथों के द्वारा हर रोज सुबह 4-5 घंटे के लिए, प्रचार कभी ये ना सोचे कि मैंने बहुत सीख लिया है, अभी जिस दिन ऐसे सोचेगा उसकी मृत्यु होना शुरू हो जाएगी आध्यात्मिक रूप से। तो महाप्रभु ने फिर सोचा कि अरे ये तो उत्तर मिल गया मेरे प्रश्न का, कूर्म पुराण से वो पन्ने निकलवा लिए महाप्रभु ने, उसको देना होगा। फिर वापस आए महाप्रभु, वापस दक्षिण भारत से गुजरते हुए उसके घर पे विजय चाहे रामदास विप्र को बोले बैठो जरा देखो कुरुम पुराण से ओरिजिनल पत्ते लेकर के आए, माया सीता गई थी ये नहीं। तब वो विप्रदास रामदास विप्र एकदम आनंद, वो तो पागल आनंद में एकदम, अभी जब शास्त्र से दिखा दिया भगवान की बात भी नहीं स्वीकार किया, अब बोला आप स्वयं मेरे भगवान राम ही है, पूरा हृदय उल्लास हो गया। अब बोला उस दिन मैंने आस्ते व्यास्ते जल्दी में कैसे भी सेवा करके दे दिया था, अब मेरा संशय दूर हो गया, अब आप बैठो जरा मैं बढ़िया फिस्ट बना के खिलाऊंगा, और बढ़िया फिस्ट बना के खिलाया फिर महाप्रभु। तो इससे हमें शिक्षा मिलती है कि अगर हम चाहते हैं कि मैं खुद अच्छा सेवा करूं या दूसरे मेरे लिए अच्छा सेवा करें, तो उनके हृदय में छुपे हुए संशयों को हमने दूर करने के लिए मेहनत करना है अपनी वाणी से और अपने व्यवहार से, धर्म स्थापन हेतु साधु व्यवहार, अपने प्रचार से मुख के द्वारा और अपने व्यवहार से उसके संशयों को दूर करना है, हमें धर्म की स्थापना करनी है। कालांतर में जब जितनी मात्रा में संशय दूर होते चले जाएंगे, सेवा अपने आप प्रकट होगी। रामदास विप्र को महाप्रभु ने नहीं कहा कि भूख लग रही है भैया, अभी इतना बढ़िया दिया कुछ तो थोड़ा, नहीं, अपने आप बोले रामदास विप्र, अपने आप बोले कि महाप्रभु उस दिन अच्छे से नहीं खिलाए तो मेरा मन डिस्टर्ब था, आज मन शांत खुश है आनंद है, आप बैठो जरा फिट खिलाऊंगा। तो इसी प्रकार से हमने श्रवण करना है परंपरा में शास्त्रों से। प्रभुपाद जी लिखते हैं दसवें स्कंद के गीता में दसवें अध्याय के आठवें श्लोक में कि जैसे इस प्रकार से जिस व्यक्ति ने अपने गुरु के माध्यम से, जो गुरु शास्त्रों से उद्धृत करते हुए प्रचार करता है, ये दो कंडीशन देते हैं, जिसने भरपूर ऐसा श्रवण किया है, शिक्षा लिया है, उसने प्रचार करना चाहिए। और चैतन्य महाप्रभु खुद सिखा रहे हैं अपने आचरण से कि शास्त्रों से उद्धृत करते हुए हमने प्रचार करना चाहिए, तो संशय नाश होगा। विद्यते हृदय ग्रंथ छिद्यन्ते सर्व संशयाः, हृदय के सारे संशय दूर होंगे अपने आप हृदय में। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः, अपने आप वासुदेवे भगवती भक्ति योग, है ना, समझे ना, अपने आप हृदय में भगवान स्थित होंगे अपने आप, जब हम इस प्रकार से संशय दूर करके चलेंगे। आप देखेंगे जब काजी का संशय दूर किया, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं चैतन्य महाप्रभु ने, प्रभुपाद जी गीता के 16वें अध्याय में लिखते हैं तात्पर्य में, लॉजिक एंड अंडरस्टैंडिंग, तर्क, अच्छा तर्क और शास्त्रों की ठीक साइंटिफिक प्रस्तुतिकरण के द्वारा हमने प्रचार करना है। और प्रकाशानंद सरस्वती के जो शिष्य हैं, जब वो बोल रहे हैं, अभी महाप्रभु ने प्रकाशानंद सरस्वती का परिवर्तन कर दिया वैष्णव के रूप में, अभी प्रकाशानंद सरस्वती के शिष्य जो उनके समान पढ़े लिखे थे, वो बोल रहे हैं अभी कि कैसे चैतन्य महाप्रभु ने शास्त्रों से और बढ़िया से समझ दे करके तर्क वितर्क लॉजिक के द्वारा और शास्त्रों से जब हमको प्रचार किया है, उससे हम कन्विंस हो गए हैं। तो हम जब प्रचार करने जाएं तो हम भी प्रयास करें कि लॉजिक और शास्त्रों का वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुतिकरण। प्रभुपाद जी लिखते हैं काजी के अध्याय में भी कि काजी बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति था, प्रभुपाद लिखते हैं ये लाइन, काजी बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था। हम कई बार बोलते थे अरे पापी लोग हैं, अरे ऐसे हैं वैसे, नहीं, हमने क्या उसको सही से प्रस्तुत किया है प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ करके, प्रभुपाद जी के तर्कों के द्वारा और प्रभुपाद जी के उदाहरणों के द्वारा और प्रभुपाद जी के श्लोकों के द्वारा, जो आचार्यों के शास्त्रों के श्लोकों के द्वारा हम करेंगे तो जरूर भक्त भक्त बन जाएंगे। काजी जैसा व्यक्ति पर भक्त बन गया, महाप्रभु का उदाहरण देख करके, प्रकाशानंद सरस्वती उनकी नम्रता को देख करके, उनके व्यवहार को देख करके। तो युक्तिपूर्ण प्रचार, प्रीतिपूर्ण व्यवहार, ये जब हमारे जीवन में रहेगा तो प्रचार अपने आप बड़े आसानी से हो जाएगा। प्रभुपाद जी बार बार हमको समझाते हैं ये अपने जीवन में और अपने उदाहरण से कि कैसे हमने, प्रभुपाद जी मध्य लीला के 25वें अध्याय के 20वें तात्पर्य में भी लिखते हैं कि हमने अभी अभी रोम, जिनेवा, पेरिस, फ्रैंकफर्ट की यात्रा की है, यूरोपियन शहरों की, और वहाँ पर बड़े क्रिश्चियन पादरी, दार्शनिक, योगी मिले, लेकिन सबको हमने भगवान कृष्ण की कृपा से भक्ति की महत्वता के बारे में कन्विंस कर दिया हमारे साउंड लॉजिक एंड साइंटिफिक प्रेजेंटेशन, हमारे बढ़िया तर्क वितर्क और शास्त्र को प्रस्तुत करने की वजह से। चैतन्य महाप्रभु की जो भविष्यवाणी है, हर नगर गादी ग्राम में प्रचार होगा, वो आज हो रहा है। तो हमने परंपरा में श्रवण करना है, अध्ययन करना है प्रभुपाद जी ग्रंथों को। हमारा दाल, चावल, सब्जी, रोटी सब प्रभुपाद जी ग्रंथ होने चाहिए, और थोड़ा चटनी इधर उधर कुछ हम अन्य भक्तों को सुन करके, प्रभुपाद जी के जैसे भक्त हैं वो ले सकते हैं अगर जरूरत है किसी को। तो हम इस प्रकार से करेंगे तो हमारा भी हृदय शुद्ध होगा, लीलाओं में रम जाएगा, हम भी आनंद को अनुभव करेंगे, और हमारा प्रचार भी इस प्रकार से अगर हम प्रभुपाद जी कृपा से करेंगे तो प्रचार भी जरूर सफल होगा और लोगों का हृदय परिवर्तन होगा। कालांतर में हम देखेंगे इसका जरूर। तो इससे पहले मैं रोकूं, भक्तों ने आज सुबह श्रीमान मुकुंद माधव प्रभु जी ने निवेदन किया सब भक्तों को कल 64 माला करने के लिए एकादशी पे, तो एक दिन सुबह की सैर में पर्थ में ऑस्ट्रेलिया में 1975 14 मई को प्रभुपाद जी भक्तों से बात कर रहे थे, तो किसी भक्त ने कुछ बात पूछी तो प्रभुपाद जी ने कहा कि नहीं, उनका ट्रेनिंग होना चाहिए, इंद्र तृप्ति अगर कोई कर रहा है तो इसका मतलब भक्ति में प्रगति नहीं है उसकी, जैसे ही कोई भक्ति में प्रगति कर रहा है उसकी इंद्र तृप्ति कम होएगी ही होएगी, ये परीक्षा है, भक्ति परेशानुभवो व्यत्रच, ये परीक्षा है, कितना भक्ति में प्रगति कर रहे हो उतनी मात्रा में इंद्र तृप्ति का भाव अपने आप कम होएगा, ये परीक्षा है। तो इस जो बीमारी को आप इस तापमान को इस बुखार को कम कीजिए धीरे धीरे, ये परीक्षा है। तो गणेश रूपी भक्त पूछते हैं, प्रभुपाद जी अगर ये बुखार कम नहीं हो रहा तो? प्रभुपाद जी कहते हैं, तो आपने फिर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, 16 माला। नहीं, 16 माला क्यों, 64 माला, यही तरीका है। तो प्रभुपाद जी की इच्छा है कि मेरे जैसे जो लोग महसूस करते हैं कमजोरी हृदय में नाना प्रकार से, तो 64 माला का यह अवसर मुकुंद माधव प्रभु जी ने प्रस्तुत किया है सब भक्तों के शुद्धिकरण के लिए, हमारे प्रसन्नता के लिए, प्रभुपाद जी प्रसन्नता के लिए। इसको कल हम अपना करके, अपना हृदय शुद्ध करके भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। तो आज हमने चर्चा किया कि कैसे पहले भाग में वृंदावन में भगवान आनंद ले रहे हैं और ब्रजवासी आनंद ले रहे हैं, और यही आनंद लेना हमारे जीवन का असली लक्ष्य है। प्रभुपाद जी कुंती महारानी शिक्षाओं में हमने देखा कि बता रहे हैं इस आनंद को जीवन भर लेते रहना है, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। फिर हमने कुछ शिक्षाएं ली। पहली शिक्षा थी कि कैसे भक्त किसी के मरने से प्रसन्न नहीं होते। दूसरा हमने लिया कि कैसे भक्ति सही से करना जरूरी है। और तीसरा हमने शिक्षा ली है कि कैसे कृष्ण लीलाओं में जब हम खो जाते हैं श्रवण करते हुए परंपरा में, उसे हृदय शुद्ध होता है। और चौथा प्रचार के लिए हमने शिक्षा लिया कि अगर हम सही सही प्रचार करेंगे और ग्रंथों का नियमित रूप से अध्ययन करते रहेंगे, श्रवण करते रहेंगे, तो हमारा हृदय प्रचार के लिए प्रेरित होगा। और ऐसे संशय आते रहेंगे, जीवन भर आते रहेंगे, लेकिन जो भक्त बड़े बैलेंस्ड क्या बोलते हैं, है ना, समतल करते हुए तत्वों को प्रस्तुत करते हैं हमेशा। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि प्रभुपाद जी का पत्र भी है कि बॉम्बे से लिखा हुआ, कि बस अगर कोई हमारी पुस्तकें नहीं समझ सकता और कुछ नहीं करने की जरूरत नहीं है, हरे कृष्ण करो प्रसाद दो और कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस एक जगह ये भी बोलते हैं। और प्रथम स्कंध में प्रभुपाद जी यही लिखते हैं प्रचारकों की जिम्मेदारी है कि नए नए तरीके ढूंढे जाए उनको प्रचार करने के। तो कई बार ऐसे लोग होते हैं जो एक किनारा पकड़ करके खींचते बैठते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी की अन्य अन्य शिक्षाओं को समतल करके समझाने वाले भक्तों से परंपरा में प्रभुपाद जी सच्चे अनुयायियों से श्रवण करेंगे, तो हमारा हृदय भी एकदम समतल होकर के नम्रता की भावना से प्रभुपाद जी के आश्रय में रह करके भगवान कृष्ण की कृपा का आनंद लेते हुए, उनके नाम के गुण रूप लीलाओं का आनंद लेते हुए, खुद भी आनंद में रहेगा, राहत की भावना नहीं आश्रय ढूंढते हुए भगवान का प्रचार करने में जीवन भर लगा रहेगा। तो पिछली बार थोड़ा लेट हो गया था, तो भक्तों ने कईयों ने बाद में प्रश्न पूछे थे और कहा था आपने समय छोड़ना चाहिए था, तो आज 3-4 मिनट तो है, तो अगर भक्त कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं या महाराज कुछ, मेरा चरणों में निवेदन है महाराज जी की, अगर कुछ महाराज टिप्पणी देना चाहते हैं तो निवेदन है उनके चरणों में, नहीं तो कोई भक्त कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो हम सेवा करने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, श्री ग्रंथराज की, भागवतम की। ये सुरु जी,
हरे कृष्ण।
हाँ जी गुरु जी,
जैसे आपने बताया था कि किसी की मृत्यु से वैष्णव प्रसन्न नहीं होते, लेकिन अगर कोई किसी भक्त के भक्ति में बाधा डालता है तो वैष्णव चाहते हैं कि उसकी मृत्यु ही उसका सही सही उसका गति हो गए
उसके। नहीं, वैष्णव ऐसा चाहते नहीं है,
तो वो थोड़ा
समझ। प्रहलाद महाराज कभी चाहे नहीं, जब देवताओं ने जाके हिरण्यकशिपु के वध की कंप्लेंट किया अपने नरसिम्हा भगवान को, भगवान विष्णु को, तो भगवान विष्णु ने ऐसे नहीं कहा, देवता ने कहा उनका कुछ कीजिए, प्रहलाद महाराज ने कभी नहीं कहा, प्रभुपाद जी ने कभी नहीं प्रार्थना किया इसका वध कर दो, प्रभुपाद जी ने प्रार्थना किया नरसिम्हदेव कुछ कीजिए, हे भगवान बड़ा परेशान कर रहा है व्यक्ति, मंदिर हम स्थापना करना चाहते हैं ताकि 2020 में हम आनंद से बैठ के कथा लीला कर सकें, तो प्रार्थना करते हैं भगवान कुछ कीजिए, भक्त कभी नहीं बोलते उसका वध कर दीजिए, प्रहलाद महाराज ने कभी नहीं बोला, देवताओं ने बोला। तो भगवान ने बोला कि ठीक है चिंता मत कीजिए, जब हिरण्यकशिपु मेरे शुद्ध भक्त प्रहलाद को कुछ परेशान करेगा तो फिर सब काम हो जाएगा अपने आप। उसी प्रकार से नरसिम्हदेव ने टाइम नहीं लगाया जब उस व्यक्ति ने प्रभुपाद जी को परेशान किया, फिर काम एक रात रात रातों रात काम हो गया। समझे ना आप, तो भक्त नहीं ऐसा चाहते। स्वस्थस्तु विश्वस्य कला प्रसिद्धताम। प्रहलाद महाराज पूरे ईर्ष्यालु व्यक्ति के हृदय शांत हो जाए, भक्ति में आ जाए, वो चाहते हैं। अगर हो जाए ऐसा, मोदेत साधु वृश्चिक सर्प हत्या, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोला सर्प को हत्या कर दो, प्रभुपाद जी हृदय में संशय आ गया, गुरु महाराज ने कैसे बोला जीव हत्या करने के लिए, वो तो संशय फिर बाद में नाश हुआ जब प्रभुपाद जी सातवें कदम में पड़ा, प्रभुपाद जी बोले मैं बड़ा खुश हो गया, मन में संशय था निकल गया उस दिन। तो भक्त कभी नहीं चाहते कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए वगैरह, वो चाहते शुद्धिकरण हो जाए उसका। जैसे गोपियां भी कंप्लेन करती हैं माता यशोदा को, इतनी लंबी कंप्लेन करती है इतने श्लोकों में, कृष्ण ऐसा करता है, ऐसा करता है, ऐसा करता है, माखन चोरी करता है, मटकी ऊपर लगा तो फोड़ देता है, वो भी ना मिले तो बच्चों को चुंटी मारता है, वो भी नहीं छोड़ता तो पेशाब कर देता है, इतना लंबा कंप्लेन करने गया तो मैं क्या बोलती हूँ गोपियां, कृष्ण को एक थप्पड़ तो लगा दो हमारे सामने। नहीं, भक्त इतनी बोलती है गोपियां कि इनके ना ये जो गहने पहनाते हैं ना बड़े चमकदार हैं, इसकी वजह से देख लेता है काम अखन छुपा है, इसको हटा दो बस। तो भक्त इतना ही चाहता है कि ये जो उपद्रव कर रहा है इसमें उपद्रव करने की शक्ति है, जो अस्त्र शस्त्र है उसको हटा दो बस भगवान, ये वृत्ति को शुद्ध कर दो बस, इतना ही चाहता है भक्त। गोपियां इतने चाहती हैं और कुछ ज्यादा नहीं। वो भी यही तो, वो तो कृष्ण लीला यशोदा मैया को सुना करके उनका आनंद देना चाहती हैं, जो लीलाओं का रस यशोदा मैया को नहीं मिल रहा, क्योंकि अपने घर में थोड़ी चोरी करेगा लाला, दूसरे घर के लिए चोरी की लीलाओं का रसा स्वाद कराने के लिए गोपियां आ रही हैं यशोदा मैया को, वो बात अलग है वृंदावन की, पर हमको ये शिक्षा लेनी है वहां से। भक्त नहीं कभी चाहता, ज्यादा से ज्यादा चाहता है तो भक्त ने चाहता है कि हे भगवान उसका हृदय शुद्ध हो जाए, ताकि ये जो गलत काम कर रहा है ना वो ना करे, बस यही है।
तो मैं प्रश्न फिर से पूछता हूँ।
हाँ।
तो जैसे प्रहलाद महाराज ने प्रार्थना की कि कुछ करिए, जैसे आप बता रहे थे कि भक्त भी,
प्रहलाद महाराज ने कोई प्रार्थना नहीं करी, इतनी भी प्रार्थना नहीं करी,
जैसे भक्त प्रार्थना करता है कि
प्रभुपाद जी ने
मेरी समस्या का कुछ समाधान कर दीजिए।
ठीक है,
तो भगवान डिसीजन लेते हैं कि इसका उद्धार करना कैसे है, उसे उसको मृत्यु दंड देके उद्धार करना है या फिर उसको शुद्ध भक्त बना के या उसके हृदय को शुद्ध करके उद्धार करना है,
जैसे अमोघा को किया।
तो अभी अगर कोई भक्त प्रार्थना करता है कि मेरे माता पिता मुझे बहुत प्रॉब्लम कर रहे हैं भक्ति में,
हाँ।
और मेरे मुझसे फीडबैक छीन रहे हैं और मुझे माला नहीं करने दे रहे हैं,
हाँ।
और मुझे दंड दे रहे हैं, पिटाई कर रहे हैं, और मुझे घर के बाहर नहीं जाने दे रहे, भक्तों के संग में नहीं रहने दे रहे हैं, वो प्रार्थना करता है तो मेरी समस्या का कुछ समाधान कीजिए,
हाँ।
भगवान किस आधार पर ये डिसीजन लेंगे कि इन्हें मृत्यु दंड देना है या फिर इनका हृदय को शुद्ध करना है?
भगवान माता पिता और उस भक्त तीनों की भक्ति के लिए जो बेस्ट है, क्योंकि इस भक्त का प्रार्थना का उद्देश्य क्या है, शुद्ध भक्ति उसका उद्देश्य है, उद्देश्य सेवा प्रार्थना कुछ भी उद्देश्य शुद्ध है तो फिर भगवान तीनों के लिए जो बेस्ट है वो करेंगे, क्योंकि अंत में भगवान को भक्त निर्णय नहीं देता कि ये कीजिए, भक्त प्रार्थना करता है आप जो तदेव हार मदमन से चेत, आपको जो ठीक लगे भगवान वो कीजिए, पर मेरे को भक्ति में बाधा आ रही है दूसरे जनों से या मेरे स्वास्थ्य से, इसको आप अगर ठीक समझें तो दूर कीजिए, ना ठीक समझें तो रखिए जैसा आपको ठीक लगे, पर मेरी भक्ति में थोड़ी बाधा आ रही है इसको आप कृपा करके, मैं इतना प्रहलाद महाराज जैसा जड़ भरत जैसा भरत महाराज जड़ भरत जैसा मैं ऐसे नहीं हूँ कि उस स्तर पर नहीं हूँ कि मैं प्रार्थना भी ना करूँ मदद के लिए, वो तो प्रार्थना मदद के लिए भी नहीं किया आनंद में भगवान की लीला स्मरण में, पर मैं उस स्तर पर हूँ भगवान, मैं इतना प्रार्थना कर सकता हूँ कि मेरी भक्ति में सहायता कीजिए, मेरे को ये सेवा में लगाइए, इतना प्रार्थना हम करना है, उसके बाद भगवान बेस्ट जो है वो करेंगे। और आम तौर से हमने जितना पढ़ा है, जथा अधीतम जथा मति, जितना हमने पढ़ा है जितना मति ही समझा है, ऐसा हमारे लोगों के लिए नहीं, भगवान की माता पिता को मृत्यु दंड दे देंगे इतना नहीं, क्योंकि पता हमारी श्रद्धा ही चली जाएगी, हम नारद मुनि के स्तर पे नहीं कि माँ मर गई तो वहाँ रो पीट रहे यार एक ही आश्रय था बताओ तुम क्या फायदा हुआ, नहीं उधर से उत्तर की दिशा में चल गए और बस नारद मुनि हो गए, हम उस स्तर पर नहीं भगवान जानते हैं, वो विशेष भक्तों के लिए प्रभुपाद जी बोलते प्रवचन में, विशेष भक्तों के लिए ऐसा आमतौर पर हमारे लिए नहीं। ठीक है, और किसी का कोई सेवा है प्रश्न? ग्रंथराज भागवतम की श्रील प्रभुपाद की निदाय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, धन्यवाद, हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद जी की जय।
इंग्लिश इंग्लिश में बोलो।